The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
दूसरे भाग में हमने कहा था कि द्रौपदी के बारे में भीम ने इंद्रप्रस्थ में ऐसा क्या कुछ देख लिया था कि वे भय से मूर्छित हो गए थे। असल में देवी मां ने हर युग में कई कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। इसी तरह महाभारत में भी देवी मां का एक अंशावतार हुई है। ये वही है जो महाभारत की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनका नाम द्रौपदी है। देवी काली का अंशावतार हैं द्रौपदी, जिन्हें 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में इससे जुड़ी एक कथा का उल्लेख है। हुआ यूं था कि एक दिन की बात है, जब इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। संयोगवश उसी समय भीम किसी कार्य से कक्ष के सामने से जा रहे थे, तो अचानक खिड़की से उनकी दृष्टि कक्ष में पड़ गई। उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है। द्रौपदी बहुत क्रोध से युधिष्ठिर की ओर देख रही है और कह रही है,
मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी।
भीम ये दृश्य देखकर क्रोधित हो गए, पर वे कुछ समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है। उनका मन अशांत हो गया। उन्हें श्री कृष्ण की याद आई। उनकी माया तो वो जानते थे। भीम ने तब भगवान का ध्यान किया तो श्री कृष्ण सामने आ गए। भीम ने श्री कृष्ण से कहा,
केशव, अर्जुन तुमसे बहुत प्रश्न करता है। मैं तो आयु में तुम दोनों से ही बड़ा हूं, इसीलिए आज तुम मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दो।
श्री कृष्ण बोले, पूछिए ना, क्या पूछते हैं। भीम ने कहा,
तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दर्शन कराओ।
तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, आज रात आप चुपचाप वन में चले जाइए। वहां तालाब के किनारे जो बड़ा वृक्ष है ना, उस पर चढ़कर बैठ जाइएगा। भीम ने वैसा ही किया। उसके बाद जैसे ही रात गहराई तो अचानक वहां एक प्रकाश फूटा और तालाब के किनारे कई सिंहासन बिछ गए। अगले ही पल इंद्र, मारुत आदि देवतागण आ गए और योग योगिनियां भी प्रकट हो गईं। उसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर सहित उनके सारे भाई चले आ रहे हैं और उन सब के पीछे नारायण भी दिखाई पड़ रहे हैं। द्रौपदी आकर सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध से फुंकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोध में धधकती द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा है। द्रौपदी देखते ही देखते मां काली में बदल गई। इतने में ही वहां उपस्थित सब की सब योगिनियां
रक्तम देही
कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। ये देखकर भीम मूर्छित हो गए। सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने भीम से पूछा, क्या देखा आपने? भीम ने उत्तर दिया,
तुम्हारी माया।
तब श्री कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा,
आप ही कुछ बताइए।
श्री कृष्ण कहते हैं, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, भोजन को छूना भी मत। जब वो पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन, भोजन परोसती हुई द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी।
दोपहर के भोजन के समय भीम ने वैसा ही किया। द्रौपदी ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तुरंत कहा,
हम पांचों को अभयदान।
द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि श्री कृष्ण भी आ गए और वे भी बोल पड़े कि
मैं छठा, मेरे प्राण भी छोड़ दो।
द्रौपदी खींच गई और उसी समय कुछ बोलने के प्रयास में उनकी जीभ दांतों के बीच आ गई। इस जीभ को घाव लग गया और धरती पर रक्त की छह बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और उन्होंने अन्य बूंद गिरने नहीं दी, उन्हें बचा लिया। द्रौपदी ने कहा,
ठीक है सखा, जैसा आप कहें।
ऐसा कहते ही पांडवों और श्री कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत युद्ध में बस यही योद्धा जीवित बचे, बाकी सब मारे गए या श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण की निमित्त बने, नारायण काली के लिए माध्यम बने और मां काली का काल रात्रि अवतार महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। जब द्रौपदी दुशासन की छाती के लहू से अपने केश धोती है, तब हमें इस सत्य का पता चलता है कि द्रौपदी असल में कौन है। द्रौपदी के रूप में मां काली ने ही अवतार लिया था ताकि भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर वे अधर्म का नाश कर सके। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया था। द्रौपदी ने भी एक अंश कम नहीं निभाया। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। तब घाव से रक्त की धारा बह निकली थी। तब द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक कोना फाड़कर उसे श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया था, जिससे रक्त बहना रुक गया था। धर्म की स्थापना हेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रौपदी को अपने पुत्र, पिता और भाई सबको खोना पड़ा था। अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होकर अंत में पांडवों ने द्रौपदी सहित पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। उसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। तब पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता तेज गति से आगे चलने लगे। स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ते समय सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाई और गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा
कि द्रौपदी ने तो कभी पाप नहीं किया, तो फिर वो क्यों गिर पड़ी, क्या कारण है?
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी हम सब में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।